This is Suno India Production. You can now listen to all our episodes on our Android and iPhone app. Download it now.
After an exhaustive 400 hours operation in Silkyara in Uttarakhand, 41 workers were rescued on November 28th and the nation let out a collective sigh of relief. The Chardham National Highway project, launched in December 2016, aimed to improve connectivity to the pilgrimage sites of Kedarnath, Badrinath, Yamunotri and Gangotri, all nestled in the Himalayas. Covering road widening, tunnel constructions, flyovers and bypasses, this 12,000 crore project spans approximately 889 kilometers through the Himalayan region. Despite its lofty goals, the project exposes critical errors and assumptions in its planning and execution. The collapse of the Silkyara tunnel, while significant, is not an isolated incident, but rather a part of a larger tragedy in the making. In fact, the reports have quoted an official from the National Highways Infrastructure Development Corporation Limited, the PSU that oversees the project, that there were nearly 20 minor collapses in the tunnel in the past 5 years. But what are the safety as well as environmental implications of this tunnel? Hello, I'm Sneha Richarya reporting for this episode of the Suno India Show, and I went to Uttarakhand to report on the Silkyara tunnel collapse. I speak with Suresh Bhai. He is an activist here living just 30 kilometers away from the Silkyara tunnel. He's been advocating for the sensitivity of the Himalayas for decades. सर, बाकी महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें हिमालयन इकोसिस्टम की फ्रेजिलिटी के बारे में थोड़ा समझाइए।
ऐसा है कि हिमालय, पूरा हिमालय क्षेत्र, खासकर मध्य हिमालय जहां पर सिलक्यारा ये टनल भी पड़ती है, और मध्य हिमालय जिसको उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरा जो है बाढ़, भूकंप और भूस्खलन के लिए बहुत संवेदनशील है, और इसकी संवेदनशीलता पिछले करीब 15-20 सालों से अधिक इसलिए हो गई कि यहाँ पर बड़े बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिसने हिमालय की कमर को बहुत कमजोर कर दिया। हिमालय की जो मिट्टी, पानी और यहाँ की जो अमूल्य वन संपदा है, उसको काट काट करके बड़े पैमाने पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, ह्यूज कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, उससे जो है हिमालय, यंग पहाड़ हैं, बहुत जवान पहाड़ हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये भूकंप के लिए बहुत संवेदनशील है, क्रैक्स जगह जगह आए हुए हैं। उत्तरकाशी का हमारे सामने उदाहरण है कि पिछले 30 सालों में 70 बार भूकंप आ चुका है। भूकंप जो है 6.6 रिचर स्केल से जरूर घटा है, वो 2.5 तक परसों भी आया है। हमें पता चला कि अभी हम सिलक्यारा गए थे तो वहां पर भी कुछ लोगों ने हमें बताया कि अभी जो 3-4 दिन पहले जो भूकंप आया था, उससे सिलक्यारा टनल के अंदर और बाहर भी कहीं कहीं दरारें पड़ी है, जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा। तो इस तरह पर जहां पर पूरी धरती कांप रही हो, वहां पर ह्यूज कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कैसे बचेगा। असल में दुख की बात तो यह है कि सरकारें तो इसके लिए सुनती नहीं है, क्योंकि उनको उनको जो है इस पूरे मध्य हिमालय को पर्यटकों के लिए इसको बिल्कुल एक ऐसगा और जैसे भोगवादी संस्कृति के रूप में हिमालय का इस्तेमाल करना है, जबकि हिमालय इन सब चीजों को नकार रहा है। और सिलक्यारा में हमको जो है ये उदाहरण अभी हमारे सामने आ चुका है कि जहां पर हिमालय की देव भूमि को महत्व दिया गया है। हम मैं ये नहीं कहता हूं कि वहां पर देवी देवताओं ने लोगों को बचाया, लेकिन असल में हिमालय सहन नहीं कर पा रहा है बड़े निर्माण कार्यों को। टनल जो है ऐसी स्थान पर बन रही है जहां 15 किलोमीटर नीचे भूगर्भ शास्त्रियों का अनुमान है कि वहां दरार आई हुई है। वो दरारें जो धरती के अंदर पड़ी हुई है, लगातार सक्रिय हो रही है, और उसके ऊपर यदि कंस्ट्रक्शन होगा तो वो बहुत जल्दी जल्दी नीचे धड़कने लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि सिलक्यारा टनल के अंदर जो अभी जो भूस्खलन या भूदशा ऊपर से हुआ, वो कोई नई बात नहीं है। यहां पर जो है उसमें पिछले 5-6 बार जो है भूस्खलन हुआ है, जिसको दबाया गया। और ये केवल यही नहीं, उत्तराखंड में टनल बेस्ड जो प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी बहुत सारे जगहों पर हादसे हुए हैं। हमने इस बारे में कई जगह लिखा भी है और सरकार जानती है। आप जानते हैं कि 2013 की आपदा के समय हजारों लोग उत्तराखंड में मारे गए, जो केदारनाथ आपदा थी, और उसका मुख्य कारण था कि जो मंदाकिनी नदी के किनारे लगभग 24 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, उनके उनके टनल निर्माण के दौरान जो सारा मलवा जो ये नदी के किनारे जो पड़ा हुआ था वही जो है सबसे बड़ा महाविनाश का कारण बना है। और आप सब जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं इस बात को कि अभी चिपको का जो गांव है रेणी गांव 2021 में और फरवरी के महीने की बात है, वहां ऊपर से बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, ग्लेशियर टूटा और 207 लोग, तपोवन वाली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसकी टनल में करीब 206 लोग मारे गए। उससे पहले उत्तरकाशी में जो है मनेरी वाली प्रोजेक्ट में 14 लोग टनल में फंसे। और टेरी बांध परियोजना में हम सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ रहे और उस समय भी जो है सैकड़ों मजदूर जो 30-35 सालों में जो बांध पर निर्माण काम चलता रहा है टेरी बांध में, उसमें कई मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, उसे खबर बाहर मिलती नहीं थी। सुंदरलाल बहुगुणा जी उस बात को कुछ स्थानों से कहते थे, हिमाचल प्रदेश में सुरंग के अंदर लोग फंसे और भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही। अभी भी हमें दुख है कि आप देखिए कि आप जहां से होकर के आए, आप सिलक्यारा पहुंचे हैं, बीच में कितने पहाड़ हैं, घुमावदार सड़कें हैं और यहाँ पर रेल लाइन को पहुंचाने का काम हो रहा है, इस पर काम चल रहा है कि देहरादून से टनल खुदेगी और उत्तरकाशी आएगी जहां पर हम रहते हैं, यहाँ मातली में।
सर, आपने जवान पहाड़ों की बात की, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस पहाड़ से ये सिलकियारा टनल बनाया जा रहा था वो दूसरे किसी टूटे हुए पहाड़ का मलबा है जो सालों पहले कभी गिरा और अब सॉलिडिफाई हो गया है, क्या ये बात सही है? इसके अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पहाड़ को कमजोर करते हैं?
बिल्कुल, ये बात आपकी बात बहुत सही, उसी विषय पर तो मैं आ रहा हूँ कि वो जो असल में वो राड़ी पर्वत है जिस जगह पर सिलक्यारा टनल बनी हुई है, और राड़ी पर्वत के ऊपर आज भी जो है समृद्ध फॉरेस्ट है, चौड़ी पत्ती के जंगल है, बांज, बुरांस, खरसू, मौरू, चौड़ी पत्ती के जंगल है, वहां बर्फ भी पड़ती है और बर्फ का पानी धीरे धीरे पिघल करके वो कहीं ना कहीं धरती के अंदर बड़े पैमाने पर सीपेज होता है। यह टनल इसलिए कमजोर है कि ऊपर से लगातार जो पानी उसके आसपास के जो जल स्रोत है उसके अंदर फूट रहे हैं, नए नए जल स्रोत बनकर के आ रहे हैं और उसका उसके गवाह जो है जो टनल में लोग फंसे हुए थे वो कह रहे हैं, वो जो मजदूर है वो कह रहे हैं कि वो जो पानी जो रिस रहा था जगह जगह उसी को हमने जो है वो थोड़ा बहुत हाथ से इकट्ठा करके उसको पिया है 14-15 दिन तक, मतलब वो जो कह रहे हैं इस तरह से इंटरव्यू में जो जगह जगह बता रहे हैं।
हाँ,
तो ये आप देखिए पानी का रिसाव जमीन के अंदर लगातार हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं और उसमें जो निर्माण काम हो रहा है वो ब्लास्टिंग से हो रहा है। अब आप बताइए कि बड़े बड़े ब्लास्टिंग करके जो है उस पहाड़ को तोड़ने का काम, उससे पहाड़ बहुत कमजोर हो गया है, जहां की धरती कांप रही हो वहां ब्लास्टिंग से काम होगा तो कैसे वो जगह सुरक्षित रहेगी? तो ये तो कहीं भी हो सकता है, टनल के अंदर यदि टनल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उत्तराखंड में ये घटनाएं होती रहेगी। हमने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखकर ये बात बताई है, अभी भी कई सारी बातों के माध्यम से उन तक खबर पहुंचाई कि भाई आप लोग इसको रोकिए, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार तो हम देख रहे हैं कि ये हाइड्रो ये जो टनल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत उत्साहित है। पिछले दिनों देहरादून में जो है टनल के जानकार लोगों को इकट्ठा किया गया, एक बड़ी मीटिंग की गई और कैसे जो है उत्तराखंड में जगह जगह टनल ही टनल बने तो उसके लिए काम हो रहा। आप देखो ना, ये बड़ी चिंताजनक है, हंसी आती है इन लोगों पर कि क्या बात जो है, और ये हादसे रोके नहीं जा सकते यदि टनल पर काम होता रहेगा।
सर, आप हमें कुछ लीगल टाइमलाइन बता सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर बात हुई और फिर एक सर्वे कमेटी भी बनाई गई।
देखिए मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल देखो, ये तो असल में सिलक्यारा जो टनल है ये ऑल वेदर रोड के लिए हो रहा है, इससे यदि ये टनल सही ढंग से निर्मित हो जाए किसी तरह से, अभी तो होना बहुत मुश्किल है, हो जाए तो करीब 29 किलोमीटर रास्ता जो है यमुनोत्री के लिए, यमुनोत्री पहुंचने के लिए कम हो जाएगा ये। और हमने जब ये टनल निर्माण का काम शुरू हुआ था तो हम लोगों ने इसका विरोध किया था, बड़कोट के लोगों ने, हम लोगों को बुलाया गया था कि भाई इसको हम नहीं चाहते हैं। बाद में ये बात आई कि साहब यहाँ तो 29 किलोमीटर कम हो जाएगा, 29 किलोमीटर कम हो जाएगा रास्ता, तो ठीक है इसको बनने दो, लेकिन इसका जो मलवा कहाँ कहाँ गिरेगा तो वो सारा मलवा जो है यमुना नदी गिराने की बात थी, आज भी वहां गिराया जा रहा है उस तरफ से जो काम हो रहा है। तो ये अब देखिए, आपकी जो ऑल वेदर रोड के लिए जो पर्यावरणीय स्वीकृति ली गई है वो टुकड़ों में ली गई है, एक साथ जो है पूरी ये ऑल वेदर रोड करीब 900 किलोमीटर लंबी है चार धाम के लिए, और इसमें बहुत छोटे छोटे हिस्सों के लिए ईआईए जिसको कहते हैं उसकी स्वीकृति ली गई, और उसको इस तरह से बड़े उसके साथ चालाकी से ये दिखाया गया है कि इसमें जंगल नहीं है, इसमें कहीं कोई मकान दुकान ये बहुत कम आ रहे हैं, लोगों की छोटे छोटे जो मार्केट बने हुए हैं ये भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब ऑल वेदर रोड पर काम 2016 के बाद शुरू हुआ तो लगभग 2 लाख पेड़ अब तक काट चुकी है सरकार, जो ऑल वेदर रोड की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जगह जगह आई हुई है, करीब 80-90 अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियां हैं, तो इन्होंने अब तक 2 लाख पेड़ काट दिए हैं। और छोटे छोटे जो बाजार जो चार धाम के लिए बने हुए थे वो सारे बर्बाद हो चुके हैं, और बहुत सारे क्षेत्र जहां पर बहुत कम लैंडस्लाइड होता था वो बहुत ज्यादा डेंजर जोन बन गए। इस समय उत्तराखंड में लगभग 200 से अधिक डेंजर जोन है जहां पर चार धाम यात्रा के दौरान जो है गाड़ियां रुकी रहती है। इस साल की बारिश में तो 442 स्थानों पर जो है लैंडस्लाइड हुआ और चार धाम पहुंचने तक जो है लोगों को, देश के लोगों को बहुत परेशानी हुई। ये ऑल वेदर रोड के मलबा के कारण हुआ, क्योंकि इतनी चौड़ी सड़क बना रहे हैं कि यहाँ के जो सीधे खड़े पहाड़ हैं उस पर सीधे कटिंग करने से वो पहाड़ लगातार दरकता रहता है। वो तब तक दरकता रहता है जब तक कि वो ढलान में नहीं हुआ या अपने आप कहीं स्थिर नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति जो है वो आने वाले दिनों में बनती जा रही है, कम नहीं हो रही है।
लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ कि कोर्ट में क्या टाइमलाइन रही।
हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस बात को कि 2013 की जब आपदा आई तो उसके बाद भी ये कमेटी बनी थी, और जब ऑल वेदर रोड की बात आई तो उत्तराखंड में जब इसका विरोध हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई। हाई पावर कमेटी में डॉक्टर रवि चोपड़ा जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर रवि चोपड़ा जी हमारे बीच से एक जो है सामाजिक विज्ञानी है और साइंटिस्ट भी है, पर्यावरण के जानकार भी है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो हमें बहुत खुशी हुई कि जो हम लोग कह रहे हैं इसके सुझाव सब सरकार मान लेगी, लेकिन सरकार ने उनके सुझाव ही नहीं माने। उन्होंने लीगली और उनके कई सारे कानून जिसमें राजमार्ग मंत्रालय की एक गाइडलाइन है जिसमें 60 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क नहीं बननी चाहिए थी, उस तरफ उन्होंने अदालत का ध्यान, ऊपरी अदालत का ध्यान, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद भी उनकी अनसुनी की गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो असल में ये पूरी जो व्यवस्था है ये तो इस तरह हिमालय पर जिस तरह से विकास को थोपा जा रहा है अंधानुकरण के नाम पर और बड़े 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 खर्च के नाम पर या पर्यटन और टूरिस्ट की सुविधा के लिए जो कुछ हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। उसमें कानून कोई काम ही नहीं कर रहा है। कानून, आप जानते हैं कि कानून बनाने वाले लोग और कानून को चलाने वाले लोग अलग अलग हैं, और कानून का इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं कोर्ट, अदालतों की स्थिति है कि अदालतों ने तो कहा है उत्तराखंड के बारे में कि यहाँ के जंगल, पानी, ग्लेशियर हमारे परिवार के जैसे सदस्य हैं, लेकिन उसके लिए जो है वो बाकायदा यहाँ के हाई कोर्ट ने, नैनीताल हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें मुख्य सचिव को उसका जो है मुख्य मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी दी। उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ। बाद में यहाँ की राज्य सरकार अदालत में चली गई और कहा कि साहब हमको तो विकास हमारा रुक जाएगा और हम तो ये काम नहीं कर सकते हैं, मतलब हम पर्यावरण का ही नुकसान कर सकते हैं, पर्यावरण को नहीं बचा सकते हैं।
सर, उत्तराखंड की नदियों में बड़े पैमाने पर मलबा बहाया जाता है, इस बात को लेकर क्या चर्चा है?
देखो यही तो सबसे बड़ी चिंता है कि बड़े जो निर्माण कार्य हो रहा है इसका मलबा सीधा नदियों और जल स्रोतों में उडेला जा रहा है बेहिचक, जबकि नियम यह है कि जैसे जैसे निर्माण होता है वैसे वैसे दीवाल लगा करके दोनों साइड से, किनारे से, जहां से नदी किनारे से बह रही है, क्योंकि नदी के ही बहाव के साथ साथ तो सड़कें बन रही है, तो उसको रोकने के लिए जो निर्माण के दौरान जो मलबा आ रहा है उसको रोकने के लिए बाकायदा दीवाल के सहारे से उसको रोका जाए और उसमें पेड़ लग जाए, और सड़क के किनारे लिखा होना चाहिए कि ये डंपिंग यार्ड है मलबे का। लेकिन कहीं आपने देखा, आप इतने दूर से यहाँ पहाड़ में आए हो, आप ऑल वेदर रोड से होकर के गए हैं सिलक्यारा, आपने कहीं देखा कि ये डंपिंग यार्ड है?
नहीं,
सारा का
नहीं।
सारा मलबा, सारा का सारा मलबा जो है या तो खेतों में डाल दिया है या जल स्रोतों में डाल दिया है या गार्ड गदेरों में जहां से पानी बह करके भागीरथी में जा रहा है उसको जो है डंपिंग यार्ड बना दिया, और जल स्रोतों की और नदियों की स्थिति हो गई कि वहां पर गाद भरने की स्थिति जो है पैदा हो गई, तो बड़े पैमाने पर हो रहा है और बाढ़ और भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ा दी गई है।
क्या ये एक इंजीनियरिंग मेस भी है जिस तरह से इस प्रोजेक्ट की इंजीनियरिंग की गई?
भूगर्भ शास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट ने सरकार के सामने दी है। 2017 में एक मीटिंग हुई थी देहरादून में जिसमें खड़क सिंह बालदिया जो है, केएस बालदिया उस समय जिंदा थे, उसमें कई हमारे उत्तराखंड के लोग शामिल हुए थे और सरकार को कहा गया था कि इसमें कहीं भी जो है वो आपदा को रोकने के एलिमेंट नहीं है, चाहे चाहे ये ऑल वेदर रोड हो, चाहे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल लाइन बन रही है उसमें कहीं भी आपदा को रोकने के कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये उन्होंने कहा था, वैज्ञानिकों ने कहा था। और दूसरी तरफ जो है वो राज्य व्यवस्था ने या जो भी निर्माणकर्ता लोग हैं उन्होंने अपने तरह के लोग रखे हुए हैं, अपने तरह के फैसिलिटेटर नाम के वैज्ञानिक रखे हुए हैं और उनसे मुहर लगा करके वो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने तो सारी स्वीकृतियां ले रखी है, आप कैसे कह रहे हैं, आप तो विकास विरोधी हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, हमारा हमारी सीधी मांग है कि देखो हिमालय में जो निर्माण के काम हो रहे हैं वो हरिद्वार, लखनऊ और दिल्ली के जैसे नहीं हो सकता है। हिमालय की भौगोलिक संरचना बहुत नैरो है, बहुत संकुचित है, छोटी है, यहाँ छोटी छोटी संरचनाएं बनेगी और वो टिकाऊ होनी चाहिए। और टिकाऊ वो तभी होगी जब आप हिमालय के अनुकूल और यहाँ के लोग गांव में रह सके, यहाँ के लोग सड़कों के किनारे अपने जो पुराने होटल जो उन्होंने छोटे छोटे बाजार वो टिके रहे, उनके अनुकूल आप सड़कों का निर्माण करिए, जो सरकार का भी नियम था कि 7 मीटर से अधिक चौड़ी नहीं होनी चाहिए। पहले पहले जब ऑल वेदर रोड की सूचना आई 2016 में तो 18 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की सूचना थी, हम बहुत चिंतित थे इस बात के लिए। वो तो कोर्ट ने जो है एक बड़ा काम तो किया है कि उन्होंने 18 मीटर चौड़ी सड़क को जो है 10 मीटर पर लाया, कहीं कहीं 12 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है, डामर भी पड़ गया उस पर, लेकिन कई जगह 18 मीटर चौड़ी सड़क भी बनी हुई है। अभी मैं आपको बताऊं कि उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच अभी ऑल वेदर रोड का काम होना है जिसमें 2 लाख से अधिक देवदार के पेड़ कटने वाले हैं। सिलक्यारा सुरंग के आसपास भी हजारों पेड़ काटे गए हैं और उसका मलवा सीधा जो है सिलक्यारा से जो नदी आ रही है, छोटे सा गदेरा आपने देखा होगा जिस पर पुल भी लगा रहे हैं वो उसके मुहाने तक, टनल के मुहाने तक जो पुल लगने वाला है, हाँ वो असल में पानी का स्रोत है, जल स्रोत है वो बहुत बड़ा, जो भागीरथी को फीडबैक करता है, अब उसको उन्होंने मलवे से भर दिया। और सिलक्यारा सिलक्यारा में लोगों को बचाया गया, ये तो हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, सबको खुशी है कि वो घर में पहुंच जाएंगे, वो मजदूर जिनको इतना कष्ट हुआ, इतना ज्यादा दुख झेलना पड़ा, परेशानी हुई होगी, लेकिन सवाल यह है कि सिलक्यारा टनल अब किसी काम की नहीं बची हुई है। आपको पता है कि सिंगोली भटवाड़ी परियोजना पूरी तरह से खत्म हो गई थी 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद, 24 जल विद्युत परियोजनाएं, उसमें से 6-7 जल विद्युत परियोजनाओं को इन लोगों ने जो मलवे में तब्दील हो गया था, मलवे की ढेर बन गया था, टनल बेस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, मंदाकिनी नदी पर उसको फिर से बनाया गया। अब क्या बताएं, ये तो हिमालय के प्रति जो विकास की जिद है ये तो बहुत अनोखी है और ये हमने पहले कभी देखी नहीं इस तरह से, बहुत चिंताजनक है और सुन भी कोई रहा नहीं। मुझे एक चिंता है, मैं 2 बार वहां गया, देश के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग वहां इकट्ठे हुए हैं उन्होंने किसी भी स्थानीय व्यक्ति का उस बारे में लोग क्या कहना चाहते हैं, स्थानीय पर्यावरण में जी रहे लोग उस सुरंग के निर्माण से कितने प्रभावित हैं, वो चाहते थे कि नहीं चाहते थे, इस बात को बिल्कुल नहीं सुना गया। जो भी लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, खासकर मैं उन पर आ रहा हूं, उन्होंने बस केवल जो है वो उसके सामने खड़े होकर के वर्णन किया कि अभी लोग अभी मशीन वहां चली गई है, अभी ऊपर चली गई है, फिर नई आ गई, पुरानी टूट गई, ये सब हो गया, इतने तक सीमित रहे। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने खुद ही जो है वो जो सवाल पूछना चाहिए वो खुद ही जो है उसका जवाब वो दे रहे थे।
इसमें ये भी कहा गया कि एक इमरजेंसी एग्जिट जो आमतौर पर हर टनल कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए वो मिसिंग था।
वो जो पाइप उसमें लगता है, जैसे जैसे निर्माण होता है तो एक बड़ा पाइप होता है, यदि वो लगा होता जो तो वो निश्चित ही जो है उसके कारण से वहां तक टनल में जो लोग फंस गए थे वो पहुंचा जा सकता था, जो 8-9 दिन लग गए उन तक पहुंचने में। वो पाइप उन्होंने निकाल दिया था उस समय, उसको ह्यूम पाइप कहते हैं, तो ह्यूम पाइप तो उन्होंने हटा रखा था क्योंकि निर्माण कंपनी जो है इतनी आजाद है कि उनको चिंता ही नहीं है कि उनकी टनल टूट रही है, और टूटने में यदि कोई हादसा हो गया तो उसके रेस्क्यू के क्या उपाय होंगे। उत्तराखंड में अभी देहरादून में आपदा प्रबंधन पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें अमिताभ बच्चन और उत्तराखंड की सरकार की फोटो हमने देखी। अब आप बताइए कि हमने सवाल पूछा है अपने सोशल मीडिया पर कि भाई इस आपदा में कहीं सुरंग बांधों के कारण जो आपदा आ रही है इस पर भी क्या चर्चा होगी, क्या उसकी सच्चाई पर कोई प्रेजेंटेशन होगा, तो वहां जो मीटिंग में लोग बैठे हुए थे, साहब यहाँ तो चर्चा उस तरह की है ही नहीं, हम क्या करें। तो ये तो निर्माण काम ये आज नहीं, टीरी बांध विरोध से भी ऐसे ही चल रहा है, और ये अब भी ऐसे ही है, पहले भी ऐसे ही था। लेकिन इसका एक ही तरीका है कि हिमालय में विकास का मॉडल जो है मैदानी मानकों से पृथक होना चाहिए, ये इसका जवाब है। और पार्लियामेंट में इसकी इसकी बहस हुई है, रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बहस कराई थी हम सब लोगों के आवेदन पर, और उसके बाद सारे लोगों ने यह तय किया था पार्लियामेंटेरियन ने कि हिमालय के लिए अलग मंत्रालय बनेगा। हम फिर जो है नीति आयोग में गए, हमने कहा भाई आप अलग मंत्रालय तो बनाएंगे लेकिन मंत्र तो बनाइए पहले, मंत्र का मतलब एक पॉलिसी आप बनाए, ये केंद्रीय एक एक स्ट्रांग पॉलिसी बनाई हिमालय के लिए, इंटीग्रेटेड जिसको कहते हैं हिमालय के लिए, एक अच्छी पॉलिसी बनाई है जिसमें हम हिमालय को बचा सके। तो ये बात जब तक होगी नहीं तब तक ये कंपनियां तो बहुत आती रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के दौरान यही तो सबसे बड़ी बात थी कि जब आंदोलन हुआ तो लोग कहते थे कि हमको रोजगार मिलेगा, हमारा पलायन रुकेगा, लेकिन यहाँ तो इतनी कंपनियां आ रही, स्थानीय लोगों को कहाँ रोजगार मिलेगा। क्या वहां उस टनल के अंदर कोई उत्तराखंड का मजदूर, सिर्फ दो मजदूर फंसे थे, सब मजदूर बाहर के राज्यों के थे। मैं आपको कहूंगा कि यदि ये मजदूर सारे उत्तराखंड के होते तो बहुत मुश्किल होता स्थानीय गवर्नमेंट को इस लोगों का विरोध सहन करना, लेकिन वो जगह जगह के गरीब मजदूर थे तो कौन पूछता है किसको, कोई आया भी नहीं बाहर से, और यहाँ के लोगों ने कुछ बोला नहीं क्योंकि विकास हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस दौरान हम सरकार को बोलें कि भाई ये टनल बेस्ड जो प्रोजेक्ट है ये इस पर रीथिंक करो, पुनर्विचार करो और इसको बंद करो, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तराखंड के अनुसार काम कराओ, ये संवेदनशील एरिया है, बड़ा यंग माउंटेन है और ये जगह जगह टूट रहा है, इसकी कमर बचानी है तो इसको यहाँ बड़े निर्माण काम, बड़ी 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 मशीनें ला करके इसको मत तोड़ो हिमालय को इस तरह से। अच्छा दूसरी बात, एक मुद्दा है जो आपको सवाल पूछना चाहिए। देखो राज्य व्यवस्था और केंद्र व्यवस्था कह रही है कि वो टनल इसलिए बना रहे हैं कि भाई हमको जल्दी जल्दी चार धाम में पहुंचना है, रास्ता को कम दूरी तय हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बरसों से जो है चार धाम के लिए जाने वाले जो सड़कें हैं उत्तराखंड में, जो लगभग 900 किलोमीटर में पड़ती है, टनल से तो जो कम हो रही है सड़कें तो वो मुझे लगता है कि 1,500 किलोमीटर तक भी हो सकती है, टनल के कारण से तो और कम दूरी घट रही है, जगह जगह टनल्स बन रही है। आप देखिए कि बरसों से, पुरातन समय से जब लोग तीर्थ यात्रा के नाम पर, पर्यटन के नाम पर चार धाम में आते हैं तो जगह जगह छोटे छोटे बाजारों से होकर आते हैं, वहां टिकते हैं, वहां पर होटल बने हुए हैं, चाय पीते हैं, वहां की बिक्री होती है, जो लोकल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहे हैं वो बिकते हैं, लोगों की इनकम होती है, किसानों की आय बढ़ती है। जब आप टनल बनाएंगे जगह जगह तो वो तो जो छोटे छोटे बाजार बने हुए वो तो साइड लाइन हो जाएंगे। यहाँ जो है बड़कोट का बाजार, जहां पर कम से कम 20,000 की आबादी है और होटल और रेस्तरा हैं बड़े बड़े बने हुए हैं, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे इस टनल के बाद, और सीधा लोग यमुनोत्री जाएंगे और टनल से फिर वापस चले जाएंगे देहरादून, तो बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी इससे।
एक आखिरी सवाल, आप रेलवे लाइन की बात कर रहे थे, वो परियोजना को कैसे देख रहे हैं?
एक रेलवे लाइन तो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की बन रही है, लगभग 126 किलोमीटर, जिसमें 80 किलोमीटर जो है टनल के अंदर है बहन जी। अब आप देखिए, आप टनल के अंदर, और मानवाद कभी यही स्थिति हो गई तो वहां सारी जिंदगियां फंस सकती है, इसे कोई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और टनल जो निर्माण जो ऋषिकेश के लिए से कर्णप्रयाग तक हो रहा है 126 किलोमीटर में, उसमें अब तक 30 गांव में दरारें आ गई है, 30 गांव के सैकड़ों घरों की दीवारों पर क्रेक आ गए हैं। पौड़ी जिले में पड़ता है, पौड़ी जिले के डीएम आशीष कुमार जी ने, आशीष चौहान जी ने उसकी एक रिपोर्ट जो है तैयार करने के लिए कहा था आपदा के समय, जब अभी बाढ़ आई जुलाई अगस्त में, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। 30 गांव में, 30 विलेज, जहां क्रेक, जहां के जल स्रोत सूख रहे हैं, जहां जो है लोगों के मकानों में दरारें आ गई है, जहां खेतों की नमी सूख गई है, ह्यूमिडिटी जो है वो सूख रही है लगातार, वो लोग चिल्ला रहे हैं लगातार, कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि जब नीचे से सुरंग बनती है तो ऊपर जो गाँव का पानी है सूख जाता है, वो नीचे धंस जाता है, क्योंकि भूकंप भी आ रहा है, जब खेत यदि ऊपर होंगे लोगों के खेत, तो उसका पानी भी सूख जाता है। जब खेतों में पानी सूख जाएगा तो वहां उत्पादन कहां से होगा। जंगल जो है बड़े पैमाने पर कटने लग जाते हैं, एकल प्रजाति की वन प्रजातियों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, चौड़ी पत्ती के जंगल समाप्त हो जाते हैं। तो हम तो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको 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 अधिक जो है पोषित कर रहे हैं इंटरनल बेस प्रोजेक्ट से। और दूसरी 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 लाइन बनाने वाले हैं देहरादून से लेकर के और गंगोत्री तक भी एक रेल लाइन बनेगी, वो भी करीब 120 किलोमीटर की है, उसमें भी 70 किलोमीटर सुरंग बनेगी। अब आप बताइए कितनी विकास के नाम पर इतना ज्यादा, पता नहीं कहां से ये टेक्नोलॉजी आ गई। और क्यों, ये क्या जरूरत है यार रेल? आखिर लोग क्या देखना चाहते हैं उत्तराखंड में? यहाँ की प्रकृति को देखना चाहते हैं, यहाँ के जंगल को देखना चाहते हैं, यहाँ की बहती हुई नदियों को देखना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को, यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को देखना, लोगों को, लोग पर्यटक मिलना चाहता है यहाँ स्थानीय लोगों को। इन सुरंगों में कैसे मिलेगा? जब लोग सुरंगों के अंदर जाएंगे तो वो यहाँ की संस्कृति और प्रकृति से कैसे रूबरू होंगे? हाँ, रेस्क्यू के नाम पर बहुत बर्बादी हुई है, लोग जिंदगियां बच गई है, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन पहाड़ तो बहुत संवेदनशील हो गया। आगे जो है और बड़ी भारी जोखिम है उस एरिया में। थैंक यू
जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।